कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि उपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितम्। अज्ञान तिम्रांथानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम पराचार्य गुरुभ्यो नमः, सकल कलुष विध्वंसकां श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र परिणाम मोक्ष शास्त्र नाम देयम्। अस्मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनोनुसार मासाद्य श्रीमद् उमा स्वामी आचार्य देवैर्विरचितं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की, आज छठा अध्याय जो कि पूरे तत्वार सूत्र में आचार्य श्री की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरा तत्वार सूत्र ही महत्वपूर्ण है, पर उसमें जो छठा अध्याय है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किन भावों से अपन किन कर्मों को बांध लेते हैं और जानकारी ही नहीं होती, ये इसमें बताया गया है। तो हम ज्ञान हासिल करके जानकारी हासिल करके उन भावों से बचें ताकि हम भी कर्म बंध से बच सकें, इसलिए ये छठा अध्याय महत्वपूर्ण है। आश्रो के साथ अपन किस तरह संवर कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं, आश्रो में भी शुभ और अशुभ किस प्रकार के हैं, ये सब इस अध्याय से अपन समझ सकते हैं। सातवें अध्याय में आश्रो के साथ साथ संवर की भी चर्चा है, बाकी के अध्यायों में संवर और निर्जरा की चर्चा है, मोक्ष की चर्चा है, लेकिन इस अध्याय का, छठे अध्याय का अपन विचार करें तो आश्रो किस तरह होता है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का आश्रो हो सकता है, लेकिन हमारे लिए शुभ और अशुभ आश्रो दोनों ही संसार में रोके रखने वाले हैं। अशुभ का आश्रो तो मुझे संसार में भटकाता है और शुभ का आश्रय तो मुझे संसार में भटकाता नहीं है लेकिन अटकाए रखता है, इसलिए मुझे तो दोनों प्रकार के आश्रय की अपेक्षा संवर और निर्जरा ही उपादेय है, वही प्राप्त करने योग्य है। ऐसा इस अध्याय को पढ़ते समय अपन को ध्यान में बना रहे। जैसे अपने कमरा है, कमरे में दो खिड़कियां लगी हैं अलग अलग दिशाओं में, सो एक खिड़की खुलती है बाग बगीचे की तरफ जहां की सुगंधित फूल लगे हैं, और एक खिड़की खुलती है कचरा घर की तरफ। सो भाई कमरे में बैठे हुए हैं अपन, जो बाहर है कमरे से उनकी बात नहीं है, लेकिन जो अभी आश्रय की प्रक्रिया में लिप्त हैं, जो कर्म बंधन से युक्त हैं, बंध ही रहे हैं कर्म, आश्रय हो ही रहा है, उनकी अपेक्षा से कौन सी खिड़की खोलना है ये कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है। मुझे सुगंधित हवा आवे इस प्रकार की खिड़की खोलना है कि कचरा घर की तरफ से जो दुर्गंध आने वाली है वो खिड़की खोलना है। मजा ये है कि अगर आप सुगंधित जहां से हवा आती है शुभ का आश्रय होता है उस तरह के परिणाम करेंगे तो अशुभ के आश्रय का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा। कर्म प्रकृतियों में स्थिति और अनुभाग अत्यंत अल्प पड़ेगा, जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें डोमिनेट स्थिति और अनुभाग अपने शुभ में पड़ेगा। इस प्रकार अपन विचार करें कि हमें शुभ का आश्रय करना है या कि अशुभ का आश्रय, जब आश्रय करना ही है वैसे तो संवर और निर्जरा ही अपने लिए उपादेय है, कछु शुभ का आश्रय उपादेय नहीं है, लेकिन भाई जब हमें शुभ अशुभ में से चुनना पड़े तो इतना तो हमारा विवेक है कि हम उसमें से अच्छी चीज ही चुनेंगे है? इस प्रकार अपन आश्रय तत्व का विचार करके उसे समझने की कोशिश करें। काय वांग मनः कर्म योगा, शरीर वचन और मन की क्रिया को ही योग कहते हैं। इन तीनों के माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वही मन वचन काय ऐसे तीन भेदों से योग बन जाता है। मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों के माध्यम से ही साश्रवा और वही जो मन वचन काय के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है वही आश्रय में कारण बनता है। सो उसे ही आश्रय कह दिया। अपन आश्रय को पहले अपने अंदर ठीक से समझ लेवे कि अपने आत्मा के ऊपर कर्म बंध के लिए योग अनंतानंत पुद्गल वर्गनाएं विद्यमान है, जो अपने भावों के द्वारा मिथ्यात्व इत्यादि और कषायों के द्वारा निरंतर कर्म रूप में परिवर्तित होने के लिए उम्मीदवार है। सो जैसे ही अपन मिथ्यात्व और कषाय इत्यादि करते हैं सो अपने लिए यही भाव आश्रय बन जाता है, जिसके माध्यम से और जो पुद्गल वर्गनाएं हैं वे कर्म रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी को द्रव्य आश्रय कहते हैं। अपन को बाल रूप की अपेक्षा से बताया गया कि कर्मों के आने का नाम आश्रय है। तो भैया कहूं दूर से 2 किलोमीटर दूर से कर्म नहीं आऊंगे, वो तो जैसे जिस क्षण अपने भावों में स्थिति बनी सो अनंत अनंत पुद्गल वर्गनाएं वो कर्म रूप से परिवर्तित होकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हो जाती हैं, बंध को प्राप्त हो जाती हैं। यह जो परिवर्तन है इसी को अपन द्रव्य आश्रय कहते हैं, और जिस माध्यम से यह परिवर्तन हुआ है पुद्गल वर्गनाओं पर कर्म रूप में वो जो भाव है वो भाव आश्रय कहलाते हैं। ये अपन को अपने भीतर समझना चाहिए, नहीं तो बाल बोध वाली चर्चा है कि कहीं से आ रहे हैं कर्म और वे आत्मा के साथ बंधते जा रहे हैं, ये तो बहुत मोटा है। इसीलिए इन्होंने आचार्य भगवंत ने स्पष्ट किया कि काय वांग मना कर्म योगा शास्त्र, मन वचन काय की जो क्रिया है प्रकृति और प्रदेश बंद इसी के द्वारा होते हैं कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिवर्तित इसी के द्वारा होती, सो जीव वास्तव में आश्रव है। आश्रव का कारण ही यहां पर आश्रव के रूप में कहने में आ गया। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, जो शुभ योग है उसके द्वारा पुण्य का और अशुभ योग के द्वारा पाप का आश्रय होता है। जैसे लोक में जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है वही उसी प्रकार की क्रिया होती। अच्छा उद्देश्य है अगर तो अपन अच्छी क्रिया करें और बुरे उद्देश्य से बुरी क्रिया करेंगे। इसी प्रकार जो शुभ परिणाम के समय पर जो योग होता है वो शुभ योग है और अशुभ परिणामों से जो योग होता है उसे अशुभ योग कहते हैं। इसमें समझने की बात एक है कि शुभ और अशुभ कर्मों का हम अपने जीवन को अनुशासित होकर के जीते हैं। हमारे इस अनुशासन का जो कि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति और अपने आत्म स्वरूप के प्रति अत्यंत रुचि से उत्पन्न होता है, उसका प्रभाव आसपास के परिवेश पर भी पड़ता है। सो सारा परिवेश अनुशासित हो जाता है हमारे एक अकेले के अनुशासित होने से। आचार्य शांति सागर जी महाराज का उदाहरण मैंने सुना था बहुत पहले। आचार्य शांति सागर जी महाराज जो चारित चक्रवर्ती कहलाते थे, एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे, वहीं से थोड़ी दूर पर एक मुनि महाराज भी चतुर्मास कर रहे थे। चतुर्मास के दौरान अस्वस्थता के कारण उन मुनि महाराज ने संलेखना धारण कर ली, जीवन का अंत निकट जान करके। और संलेखना तो धारण कर ली स्वेच्छा से, लेकिन सहन नहीं हुआ, कर्म का तीव्र उदय आ गया, उनको भूख प्यास की वेदना सताने लगी। सो श्रावकों से उन्होंने पानी और भोजन की याचना करनी शुरू कर दी। श्रावक बड़े व्यथित हुए कि देखो कैसे कर्म का उदय आ गया महाराज को। बड़े उत्साह से तो उन्होंने संलेखना ग्रहण की, समस्त पर वस्तुओं का त्याग करने की भावना अपने उनके भीतर जागृत हुई और अब ग्रहण करने की भावना कर्म के उदय से आ गई। बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन कर्म का तीव्र उदय और मुनि महाराज के परिणाम बिगड़ते ही गए। यहां तक कि मुनि महाराज ने कहा कि भाई मेरे पास पिछी कमंडल है, इसलिए तुम मुझे भोजन और पानी नहीं देते, तो रख लो अपना पिछी कमंडल। अब तो मैं साधु नहीं हूं, मुझे तो भोजन करवाओ, पानी पिलाओ, बहुत क्षुधा की वेदना है और प्यास बहुत लगी। यहां तक उनके परिणामों में जो कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन को अत्यंत अनुराग पूर्वक सच्चे देवगुरु शास्त्र के मार्ग में अनुशासित किया था, लेकिन भैया कर्म के उदय से अनुशासन नहीं रहा। सो लोगों ने एक आध दो दिन तो बात सुनी, फिर सोचा कि दे देंगे तो ठीक नहीं है। पास में आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं, उनसे निवेदन कर ले, शायद उनके कहने से मान जाए। स्वाचारी शांति सागर जी महाराज को सब बातों से अवगत कराया कि ऐसे परिणाम बिगड़ रहे हैं महाराज के। संलेखना तो बड़े उत्साह से उन्होंने स्वीकार की थी, लेकिन क्या करें, कर्म का तीव्र उदय आ गया। हमारे सबके पाप कर्म का उदय है, जो हमारी सेवा में कमी रह गई। ऐसा बड़े विनय पूर्वक महाराज से कहा। सो महाराज ने सब बातें सुनकर के पीछे हाथ में उठाई और कहा कि संलेखना जो महाराज ले रहे उनके लिए मेरा आश नमोस्तु। बताओ, कोई की निंदा सुन के अपन उस पर थू थू करेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रणाम नाम तो बात की बात है,
पहले तो दुत्कारेंगे, तिरस्कार करेंगे, चार आदमों से कहेंगे कि देख ले लक्षण ऐसी है, है? लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज जिनने अपने जीवन को स्वयं अनुशासित किया था, सच्चे देवगुरु शास्त्र के मार्ग के प्रति अत्यंत अनुराग है, अपने कर्मों की निर्जरा और वितराग भाव प्राप्त करने के प्रति अत्यंत रुचि पूर्वक लिया था वो अनुशासन, अत्यंत आत्मीय था। सो साधर्मी को विचलित होते देख करके और उन्होंने अपने संयम के द्वारा, अपने संयमित जीवन के द्वारा उन्हें उपदेश दे दिया। लोगों ने जाकर के उन मुनि महाराज से कहा कि इतने महान आचार्य महाराज स्वयं पीछे उठा करके आपको प्रणाम करते हुए आपकी संलेखना की प्रशंसा कर रहे हैं। बस इतनी सी ही बात सुन करके उन मुनि महाराज के परिणाम बदल गए। कर्म का तीव्र उदय था, सो अपने पुरुषार्थ से उसे जीत लिया, अपने समता भाव से उसे जीत लिया और लोगों से कहा कि अरे मैं तो संलेखना ले बैठा हूं और पानी मांग रहा हूं, धिक्कार है मुझे, मुझे कोई भूल से भी अगर मांगू भी तो पानी मत दे देना, भोजन भी मत देना, मैंने तो सब चीजों का त्याग कर दिया है। ऐसे परिणाम उनके हो गए और तीन दिन तक अन्न जल के त्याग पूर्वक उन्होंने शांति पूर्वक अपनी देह का त्याग किया, संलेखना धारण करके। भैया अपने भीतर जो अनुशासन के प्रति लगाव है वो दूसरे के भीतर भी अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए रुचि उत्पन्न कर दे तो अपना अनुशासन सार्थक है। अपन अभी तो अपने जीवन को मर्यादित और अनुशासित क्यों करते हैं, महाराज जी कछु कहने लगे इस कल लो। हां भैया अभी तो आपने सिर्फ महाराज के डर से अपने जीवन को अनुशासित किया है, वास्तव में तो हमें स्वयं वितराग मार्ग के प्रति अनुराग पूर्वक अपने जीवन को मर्यादित और संयमित करना चाहिए तो अपने जीवन का कल्याण हो सकेगा। अनादिकाल से अपन ने इस उसके कहने से संसार के प्रति हमारा यश ना लोप हो जाए इस भय से अनेक प्रकार अपने जीवन को संयमित किया है, मजबूरी में किया है, लेकिन वितराग मार्ग के प्रति और वितरागता प्राप्त करने की रुचि पूर्वक अगर अपने जीवन को अनुशासित और संयमित किया हो तो वास्तव में ये संयम धर्म अपने जीवन में आ गया। इतना ही नहीं, अगर हम संयम धारण कर लेते हैं, संयमित जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करें महाराज, हमारा विल पावर बहुत कमजोर हो गए, हमारी संकल्प शक्ति जीवनी शक्ति बहुत कमजोर हो गई। भैया अपने जीवन को संयमित बनाओ तो हमारी अपनी जीवनी शक्ति, हमारी अपनी संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। याद आ जाए अपने जीवन में कि मेरा स्वरूप क्या है, वास्तव में तो अपने स्वरूप में लीन होना ही संयम है। उसी संयम की प्राप्ति के लिए बाहर से व्रत नियम इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं, वो बाह्य संयम है, बाह्य चारित्र है। अंतरंग में उस आत्मलीनता को अपने स्वभाव में रहने के लिए ही यह सब उपाय किया जाता है। उस संकल्प शक्ति को जागृत करने में ये बाहर से लिए गए व्रत नियम सहायक हो जाते हैं। एक बार एक राजा का हाथी था, बहुत बलवान। जिस समय वो युद्ध में जाता था तो सारी सेनाएं कांपने लगती थी कि हाथी से तो जीतना बहुत कठिन है, हाथी ही दो चार दस पच्चीस खों तो ऐसे ही रोंद करके निकल जाएगा। बहुत सारे युद्ध में उस हाथी ने अपने ऊपर बैठे हुए सवार राजा को युद्ध में जीत दिलाई थी, बड़ा प्रेम था उस हाथी से, लेकिन कर्म का ऐसा उदय कि पानी पीने गया था हाथी और दलदल में फंस गया। बहुत उपाय करे कि दलदल से निकल आवे, से जितना उपाय करते थे और नीचे धंसता जाता था। राजा बड़े चिंतित, सारी प्रजा भी चिंतित के देखो इतना बढ़िया तो हाथी, थोड़ा अशक्त हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन है तो उसके भीतर अपार बल, क्या करें, वो दलदल में फंस गया, अशक्त हो गया है। अब कोई उपाय नहीं सूझता था। राजा को ध्यान आया कि इस हाथी का जो महावत था उसको बुलाया जाए। वो भी वृद्ध हो गया हालांकि, लेकिन उसके आने से हाथी को शायद निकालने का कोई उपाय वो कर सके। सो महावत को बुलाया, महावत ने दूर खड़े होकर के ही हाथी की स्थिति देखी और उसे हंसी आ गई। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको इस संसार में भटकते अज्ञानी जीवों को देख करके हंसी ही तो आती है कि देखो हे तो आत्मा का स्वभाव अनंत, इतने शक्तिशाली है, कहां पंचेंद्रियों के विषयों की दलदल में फंस गए। इस बात पर हंसी आती है, सो उसको भी हंसी आई। सब प्रजाजन और राजा कहने लगे कि देखो तो हाथी तो मुश्किल में है और सब जन चिंतित हैं और तुम्हें हंसी आ रही, बताओ। महावत को सबने खोटा कहा, अच्छा नहीं कहा। फिर भी महावत ने कहा कि कोई बात नहीं, निकल आएगा हाथी तो। जरा युद्ध में जो नगाड़े बजाए जाते थे, जो बाजे बजाए जाते थे, उनका इंतजाम बजवाने का तो करो। सब जनों ने कहा कि देखो एक तो पद्रव तुमने पहले ही करो कि हंसे तो, और फिर बाद में कह रहे वो तो विपत्ति उतरो, तुम कह रहे कि बाजे बजाओ, हैं? तो उल्टा काम बता रहे, किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन महावत ने कहा, राजा ने कहा कि ठीक कहता होगा महावत, करके देखें उपाय। सो युद्ध के नगाड़े और भेरियां बजाई जाने लगी और जैसे जैसे युद्ध के वाद्य बजते हाथी के अंदर जोश उत्पन्न होता चला जाता, और इतना जोश उत्पन्न हुआ कि उस जोश में उसने दलदल से बाहर निकल करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया। सब लोग ताली बजाने लगे, प्रसन्न हो गए, अरे वाह हाथी तो बाहर निकल आया। भैया अपने भीतर क्यों नहीं जागृत होता ऐसा ही जोश, ऐसा ही आत्मविश्वास कि मैं तो अनंत शक्ति को धारण करने वाला हूं, मैं भी अपने जीवन का कल्याण कर सकता हूं, मैं भी अपने जीवन को अनुशासित कर सकता हूं। जिस दिन अपने भीतर ये आत्मविश्वास जागृत हो जावे कि मैं अनंत शक्ति को धारण करने वाला हूं, कहां इस शरीर के पीछे इन पंचेंद्री के विषयों में मैं उलझा हुआ हूं, इस दलदल में फंसा हुआ हूं, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी संकल्प शक्ति जागृत हो जाए और व्रत नियम के द्वारा और अधिक उस संकल्प शक्ति को बढ़ा करके और अपन अपने जीवन में संयम को धारण कर सकते हैं। संयम को धारण करना वास्तव में अपने जीवन को संतुलित बनाना है और कुछ नहीं। विचार करें हमारे जीवन में कितना असंतुलन है, खाने पीने ओढ़ने पहनने में सब में करने इत्यादि कार्यों में भी हमारा असंतुलन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चाहे जो खाना, चाहे जब खाना, चाहे जैसे खाना, चाहे जहां से खाना, ये तो लापरवाही वाला काम हो गया, ये संतुलित नहीं हुआ। क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, ये सारे प्रश्न मेरे भीतर अगर उठते हैं और उनके अनुसार मैं अपने जीवन को व्यवस्थित करता हूं तो संतुलित हो जाएगा जीवन। इसी तरह क्या करना, कैसे करना, क्या करने योग्य है, क्या खाने योग्य है, इसका विचार अपने भीतर अगर आ जावे, कहने से नहीं भैया कि जा चीज अमक्ष है, आप लगो चाहिए कि हाँ हमारे खावे लाख नहीं है, हमारे कैसे नहीं। ऐसा तो बहुत बार हो गया, लेकिन अपने भीतर भी तो लगे कि ठीक बात है, यह मेरे करने योग्य नहीं है, यह मेरे खाने योग्य नहीं है, ऐसा मैं स्वयं अपने अंतरंग से विचार करूं और अपने जीवन को संतुलित बनाऊं। जो जो चीजें अपन उपयोग में लेते हैं उन सब में विचार करें कि ये उपयोग में लेने लायक है या नहीं है। जिनके बारे में जानकारी नहीं हो, आचार्य भगवंतों ने कहा कि उन्हें उपयोग में नहीं ले, जो अनिष्टकारी है उनका भी उपयोग में लेने का वर्ग कहा, जो सज्जन पुरुषों के लेने योग्य नहीं है वह भी वर्गित है, जिसमें बहुत जीवों का घात हो, दस जीवों का घात हो या एक इंद्री जीवों का बहुत घात हो, वह भी ग्रहण करने योग्य नहीं। इन्हीं को तो पांच प्रकार के अमक्ष कहे। ऐसी चीज का सेवन करो जिससे कि मुंह का नशा तो एक पहले ही से है और ज्यादा नशा आ जाए और अपन गाफिल हो जाए, हे और उपादे का ज्ञान न रहे, अपने भले बुरे का ज्ञान न रहे, ऐसी चीज का सेवन न करो। यही तो कहा आचार्य भगवंतों ने हमारे जीवन को संतुलित बनाने के लिए, और बीजा बात तो कही नहीं। लगती है अपन को, क्योंकि अपन असंतुलित होकर के जीना चाहते हैं, और कोई अगर अपन को संतुलित जीवन जीने की प्रक्रिया बताए तो उस पर गुस्सा आती है कि जी अपनों अलग ही चला रही है, इनका बड़ा अनुशासन है। ऐसा अपने मन में भाव आएगा मिथ्या, जी नहीं सोचेंगे कि हां मुझे भी अपने जीवन को ऐसा ही अनुशासित बनाना चाहिए। अभी आए थे एक व्यक्ति, दो तीन दिन तक रहे, जाते समय उन्होंने कहा कि महाराज धर्म के प्रवचन तो जैसे हैं सो है ही, मैं तो आपके जीवन से एक बात सीख के जा रहा हूं कि सब काम अपने व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से करना चाहिए, किसी काम में भी गफलत या कि कर लूंगा अमर्यादित रूप से करने का जो भाव है वह छोड़ना चाहिए। मेरे जीवन में तो मैं ऐसा ही अमर्यादित होकर के असंतुलित होकर के जीवन जीता हूं, अब तो यहां से जाकर के अपने सारे काम जिस समय जो करना है जैसे करना है, करने योग्य है कि नहीं है, मैं उसी प्रकार से करूंगा। बताइए, सीखना चाहे तो उसी चीज से सीख सकते हैं, उसी चीज की निंदा करना चाहे तो निंदा भी कर सकते हैं। बताओ, अपने जीवन को अगर जिसके मन में संतुलित करने का मन होगा वो तो अच्छा ही मानेगा कि मैं भी ऐसा ही संतुलित जीवन बनाऊंगा। एक सेठ जी राजा साहब के पास भेंट करने के लिए गए और उन्होंने माल पुआ और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी पूरी वगैरह सब उनको भेंट स्वरूप चढ़ा दी। एक गरीब आदमी भी पहुंचा, सो उसने तो रूखी सूखी रोटियां महाराज को समर्पित कर दी उन बाबा जी को। सो बाबा जी ने तो माल पुआ और खीर और पुरी की तरफ देखा भी नहीं, उस गरीब आदमी की धीरे से रोटी उठाई और खाने के लिए बैठ गए। उस रईस आदमी को तो थोड़ा सा मन में लगा के देखो हमारा सामान तुम्हारा जो है लवनिंग है, और जो ले रहे रूको सूखो सो गरीब आदमी को है, ऐसा मन में भाव आ गया महाराज के, समझ में आ गया बाबा जी के, केंद्र देखो दर्पण रखा सामने उठा के लाओ अभी बता देता हूं। सो दर्पण लाए, सो कहा कि तुम अपनी जो पूड़ियां लाए हो वे दर्पण पे घिसो। सो दर्पण पे घिसी, सो पहले तो चेहरा दिखाता था, अब तो वो धुंधला हो गया, वो सब तेल लग गया वो पे, मलन हो गया दर्पण, उस गरीब आदमी की रोटियां उसके ऊपर घिसी तो दर्पण पुनः उज्जवल हो गया। राजा उससे राजा से और सेठ से कहा बाबा जी ने कि जो मन को मलिन करे वो भोजन अच्छा है कि जो मन को निर्मल करे वो भोजन अच्छा है। जो मेरे जीवन को संतुलित बनावे मैं वो कार्य करूं या जो जो मेरे जीवन को गाफिल करे असंतुलित बनावे मैं वो कार्य करूं और वो चीज खाऊं। राजा और के समझ में आ गई बात कि वास्तव में चीजें कीमती कब होती हैं, जब वे हमारे मन को मन में करें तो ही कीमती है, वरना कितनी भी कीमती चीज हो अगर हमारे जीवन को कलुषित करती हो तो उसकी कीमत कोई काम की नहीं है। भाई अपने जीवन में तो संस्कार अनादिकाल से खोटे ही पड़े हैं, उन संस्कारों को हटाना पड़ेगा तब अपने जीवन में संतुलन आएगा, आत्मविश्वास जागृत होगा और अनुशासन आएगा। सो संस्कारों को परिमार्जित करने का नाम भी संयम। खोटे संस्कार जो अपने जीवन में पड़े हैं धीरे धीरे उनका वेटेज उनका दबाव कम होता चला जावे और मेरे जीवन में अच्छाइयां आती जाएं, अगर ऐसा अपन छोटा सा भी प्रयत्न करें तो अपने जीवन में अपन संयम धारण कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि मन वचन काय तीनों मिले हैं भैया, तीनों का सदुपयोग करना सीख लो। सो खोटे संस्कार संतुलित कर देंगे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में अपने जीवन को सार्थक करने में सहयोगी होंगे। इतनी छोटी सी चीज है कि मैं मन में खोटा विचार ना करूं, वाणी से अशुभ वचन ना बोलूं, शरीर से कोई भी क्रिया अशुभ ना करूं जिससे कि जीवों का विघात हो। संस्कार तो अनादिकाल से खोटे ही पड़े हैं, उन्हीं संस्कारों को तो जीतना है। मन वचन काय की खोटी प्रक्रिया को छोड़ करके अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ करके शुभ प्रवृत्ति की तरफ अपन को बढ़ना। सो आचार्य भगवंतों ने असुहादो विनिवित्ति सोहे प्रवृत्ति अजान चारित्रम, संयम या चारित्र और कोई चीज नहीं है। अशुभ मन वचन काय की क्रिया से बच करके मन वचन काय की शुभ क्रिया में लगे रहना, इतना भी कर लो तो कम से बाह्य में चारित्र तो आ जाएगा। फिर उस बाह्य चारित्र के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक जो आत्मलीनता हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लेंगे। संस्कारों की बात भर्तृहरि के जीवन में देखने लायक है। भर्तृहरि मुनि महाराज बन गए थे, पहले तो श्रृंगार शतक लिखा और फिर उन्हीं भर्तृहरि ने मुनि महाराज बनने के बाद वैराग्य शतक लिखा। पहले भौतिक सुखों में ही सुख जान पड़ता था, फिर उसके बाद संसार से विरक्त हो करके आत्म सुख में ही सच्चा सुख है ऐसा मान करके आत्म ज्ञान पूर्वक अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्होंने मुनि व्रत धारण कर लिया। सो बैठे हुए ध्यान कर रहे थे जंगल में, अचानक उनकी आंख खुली, देखते क्या है सामने की दोनों दिशाओं से दो घुड़सवार दौड़े चले आ रहे हैं और क्षण भर में देखा कि सामने तो बहुत वेश कीमती हीरा पड़ा हुआ है, धूल में पड़े होने के बाद भी उसकी चमक अद्भुत थी। मन में क्षण भर को विचार आया सब कुछ त्याग करने के बाद भी कि ऐसा हीरा मेरे राजकोष में होता तो बड़ा समृद्ध राजकोष होता। अगले ही क्षण विचार आया कि नहीं, मैं तो इसका त्याग कर चुका हूं। लेकिन उतने में घटना यह घटी कि दोनों राजकुमारों ने अपनी तलवारें निकाल ली, किस बात के लिए कि मैंने पहले हीरा देखा है, मेरा हीरे पर अधिकार पहले है। और इतने क्षण भर में उनने देखा कि दोनों ने तलवारों से एक दूसरे पर वार करके उन्हें
समाप्त कर दिया है, हीरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आंख बंद कर ली, ध्यान में लीन हो गए, विचार करने लगे कि देखो मेरे मन में उस हीरे को ग्रहण करने का भाव आया, सो जैसे इनके मन में भाव आया और मरण में कारण बना, ऐसे ही ग्रहण का भाव संसार की वस्तुओं का मेरे मरण में ही, मेरे आत्मस्वरूप के विमुख होने में ही कारण है। संस्कार कितने भी जबरदस्त थे लेकिन समता भाव धारण करने के लिए जो रूप धारण किया था और जो अंतरंग में भाव थे उनके बल से उन्होंने अपने संस्कारों को आसानी से जीत लिया। ऐसे ही अगर अपन भी निरंतर अच्छे संस्कार अपने जीवन में डालें और कभी कदाचित बुरे संस्कार कर्म के उदय से अपन को घेर भी लेवे तो भी अपनी जीत आसानी से हो सकती है, क्योंकि संस्कार तो अपन वर्तमान में अच्छे ही डाल रहे हैं अपने आत्मा पर। एक छोटी सी घटना और है, समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना, अपने मन वचन काय का सदुपयोग करना और कुछ नहीं। संयम धारण करने का मतलब व्रत नियम ले लो, महाराज के पास सौगंध ले आओ। भैया ये तो बाद की चीज है, ये तो इसके लिए है कि आप अपने को अनुशासित कर सको, लेकिन पहले तो अपने भीतर भाव बनाओ कि मैं अपने मन वचन काय का सदुपयोग करूंगा। मैं तो अभी अपने मन वचन काय का चाहे जैसा उपयोग कर लेता हूं, दुरुपयोग भी कर लेता हूं, दूसरे का बुरा भी कर देता हूं अपने मन वचन काय से। मैं तो स्वपर कल्याण के लिए अपने मन वचन काय का उपयोग करूंगा जिससे मेरा कल्याण हो और प्राणी मात्र का कल्याण हो। इस तरह का अगर अपने भीतर विचार है और फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति करते हैं तो भाई कहने की आवश्यकता क्या पड़ेगी कि अपने जीवन में ये व्रत नियम धारण करो। अपने आप ही व्रत नियम धारण करने का विचार अपने मन में आ जाएगा, मजबूरी नहीं रहेगी, फिर जबरदस्ती नहीं रहेगी। एक सर्कस में एक व्यक्ति खेल दिखाता था, क्या करता था कि एक गोला खींचता था चाक से, उसके बीच में अपनी जीवन साथी को खड़े कर देता था और फिर दूर खड़े होकर के चक्कू फेंकता था और वो सब चाकू लगते चले जाते थे उस घेर में। एक भी चाकू कभी उसकी जीवन साथी को नहीं लगा, इतना परफेक्ट था उसका निशाना, इतना संस्कार था, बहुत अभ्यास किया था उसने। एक बार ऐसा हुआ कि घर में झगड़ा हो गया, तनातनी हो गई, इतनी बात बढ़ गई दोनों जन में कि मन ही मन उस व्यक्ति ने विचार किया कि दो में से कोई एक रहेगा, अब दो ही संगे नहीं रह सकते। ऐसे कलुषित विचार भी अपने जीवन में आ जाते हैं, आ सकते। भैया कर्म के उदय में उन्हीं को तो जीतना है, किसको दोष दे अपन, अपने ही मन को दोष दे, अपने ही कर्मों को दोष दे कि देखो क्षण भर में ऐसे खोटे विचार मेरे जीवन में आ गए। उस व्यक्ति के जीवन में भी कर्म के उदय से जिस जीवन साथी से अत्यंत प्रेम पूर्वक उसने अपनी गृहस्थी बनाई थी उसी को नष्ट करने का विचार भी आ गया और उसकी प्लानिंग भी कर ली कि कुछ नहीं करना मुझे, किसी को मेरे ऊपर संदेह भी नहीं होगा, मैं तो रोज चाकू फेंकता हूं और एक निशाना चूक जाऊंगा और चाकू जीवन साथी को लग जाएगा, उसका काम समाप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई इतने दिन से सर्कस में काम कर रहा है, अचानक उससे चूक हो गई तो कोई मेरे ऊपर संदेह भी नहीं करेगा और मैं उसे मार भी दूंगा, अपने रास्ते से हटा दूंगा। ऐसा तक विचार उसके मन में आ गया और दूसरे दिन जब वो खेल दिखाने के लिए सर्कस में पहुंचा तो थर थर कांप रहा था। उसने घेरे के बीच में अपने जीवन साथी को खड़ा किया और चाकू फेंकना शुरू किए, लेकिन आश्चर्य उसे हुआ कि एक भी चाकू
मिस नहीं हुआ, जीवन साथी को नहीं लगा, सब उसी घेरे में जाकर के लगते चले गए। उसने अपने पूरे खेल के बाद में कहा कि मैंने एक भी चाकू ठीक निशाना लगा करके नहीं फेंका, ऐसे ही फेंकता रहा कि कोई तो लग जाएगा एक आध। लेकिन पसीने पसीने हो गया। अंत में उसने कहा कि देखो, इतने दिन का अभ्यास था, उस अभ्यास का परिणाम यह हुआ कि मेरे मन में कलुषित विचार भी आ गए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। भैया ऐसा ही तो है, अपन भी अगर अच्छा संस्कार अपने जीवन में डालने, संकल्प करने कि मैं तो अच्छा ही करूंगा, तो उस संकल्प की शक्ति से अपने खोटे संस्कार भी अपने ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, उनका दबाव कम हो जाएगा। अच्छे विचारों की वजह से, अच्छी वाणी की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से जो खोटे कर्म हैं वो धीरे धीरे करके हट जाएंगे। अपन प्रयोग करके स्वयं अपने जीवन में देख लेते हैं, देख सकते हैं। भैया इस तरह से अपने जीवन को संयमित और अनुशासित बनाने का अपन को अभ्यास करना चाहिए, तभी अपना जीवन सार्थक होगा। इसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की घड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलिया। तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया
साइड बदल जाएगा, मतलब कि अभी सीधा सीधा खाते थे फिर ऐसे घुमा के खाने लगेंगे, ऐसा नहीं। दृष्टि निर्मल हो जाने पर अभी तो हम सिर्फ भूख मिटाने के लिए, आयु के लिए, बल के लिए भोजन करते थे, अब एटीट्यूड चेंज हो गया, मैं तो इस शरीर को भोजन करा रहा हूं ताकि इस शरीर से तपस्या कर सकूं, ताकि मैं इससे और लोगों की सेवा कर सकूं, भैया वृत्ति कर सकूं, मैं इससे पांच इंद्रियों और मन के भोगों को भोग सकूं, एक सोच यह है। और दृष्टि निर्मल होने पर सोच बदल गया, नहीं इस देह का मैं सदुपयोग करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा, इस वाणी से मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा क्योंकि इसी वाणी से मैंने भगवान की पूजा करी है, यह एटीट्यूड चेंज हो गया। जिस वाणी से मैंने भगवान की पूजा करी उसी से अपशब्द कहूं, अपने आप मन में ध्यान आएगा कि नहीं नहीं, जिस वाणी से मैंने भगवान की प्रशंसा करी उसी से और लोगों की निंदा करो, ये तो मेरी वाणी को ठीक नहीं जचता, तो मेरी वाणी समझ जाएगी। जिस मन में मैं भगवान के गुणों की वीतरागता की प्रशंसा करता हूं उसी मन में दूसरे के लिए बुरा विचार करो, मैं तो श्रेष्ठ ही विचार करूंगा, ऐसा भाव अपने आप मन में आने लगेगा। सब कुछ वैसा ही चल रहा है लेकिन दृष्टि बदल जाने से मानो पूरा जीवन बदल गया। अपन कहते भी हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना होगी वैसा उसे दिखाई पड़ेगा इस संसार में। जैसा संसार है वैसा नहीं देखते अपन, अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के देखते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है कोई चीज बुरी लगती है, इस कनिष्ठ की कल्पना करके हर्ष विषाद कर लेते हैं। लेकिन जिसकी दृष्टि निर्मल है वो इन सारी स्थितियों में विषमताओं के बीच भी समता का पान करता है और अपने जीवन के लिए ऊंचा उठाने की हमेशा चिंता करता है। ये दृष्टि अपन को प्राप्त हो जाए। संत रंगनाथ या रंगदास कोई एक हुए हैं, वो उनके बचपन में उनके पिताजी ने उनको फल फूल खरीदने के लिए पैसे दिए और भेजा बाजार, तो वो फल तो लाए नहीं, रस्ते में उनको दीनहीन गरीब लोग मिल गए तो उनने पैसे मांगे कि हमें तो खाने के लिए नहीं है, तो सबको वो पैसे जिनसे फल खरीदना थे वो सब बांट दिए, खाली हाथ घर लौट के आए, 10-12 साल के थे। पिताजी पहले तो इस मुश्किल में पड़े कि शायद किसी ने तमाचा माचा मार के पैसे ना छीन लिए हो, फिर जब पूछा कि क्यों फल लेकर नहीं आए तो उन्होंने कहा कि अभी तो लेकर नहीं आया लेकिन मैं तो आगामी जीवन के लिए अच्छे फल लेकर आया हूं। अब बड़े चकित हो गए कि इतना ज्ञानवान इसको छीन कैसे सकता है, छीने ही नहीं है, इसने कुछ और किया है। पिताजी को पहली समझ में नहीं आई कि अभी तुम फल नहीं लाए हो बाद में फल मिलेंगे ऐसा कह रहे हो, क्या हुआ ये तो बताओ। तो उसने सारी घटना सुनाई। उस बालक ने अपने पिता को कहा कि मैं तो भोजन करके और फल की आकांक्षा कर रहा हूं कि फल फूल खाऊंगा पेट भरने के लिए, कई लोग तो रस्ते में ऐसे थे जिनको कि एक जून का भोजन भी नहीं मिला, मैंने उनको वो राशि दे दी जिससे कि वो अपना पेट भर सकें। दृष्टि देखिएगा आप, और उपकार करके पिता को कह दिया कि फल अभी नहीं मिलेगा बाद को मिलेगा। पिताजी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा बेटे तुम भले ही फल नहीं लाए, कौन कहता है कि तुम फल नहीं लाए, तुम तो अमर फल लेकर के आए, ऐसा फल लेकर के आए जो कि खा पी करके बराबर नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जाता, पंचेंद्रिय और मन के विषयों को त्याग करके जो फल अपन पाते हैं, जो वीतरागता और जो आत्मस्वरूप अपन पाते हैं, सब कुछ छोड़ देने के बाद दूसरे के उपकार के लिए भी छोड़ते हैं अगर, तब भी अपना ही उपकार होता है, ये ध्यान रखें अपन। ऐसी दृष्टि अपन को प्राप्त हो जाए इसके लिए अपन निरंतर रोज बैठ करके विचार कर रहे हैं। पता नहीं किसको किस निमित्त से हो जाए, आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे दृष्टि की निर्मलता के लिए निमित्तों की चर्चा करी है। आज्ञा सम्यक, तो कोई ज्ञानवान नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सच्चे धर्म का काका गावी नहीं आता, उसने 7 तत्व नहीं पढ़े न वो पढ़ पाता है, निरक्षर है, लेकिन उसे ये श्रद्धान है कि जैसा तत्व का स्वरूप वीतराग भगवान ने कहा है सो ही सच्चा है। बस इतने मात्र से भगवान की आज्ञा, वीतराग भगवान की आज्ञा ही उसके लिए श्रद्धान में निमित्त बन गई। ऐसे आज्ञा सम्यक दर्शन भी आज के समय में हो सकता है बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी। अपन भी ज्यादा ज्ञानवान नहीं है ऐसा सोच करके सिर्फ मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे तत्व का स्वरूप वास्तविक क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा स्वरूप वीतरागी भगवान ने कहा है सोई सच्चा है। क्या है पूछो के का कही उनने, ये नहीं मालूम, मगर जो उनने कहा है बस वही सच्चा है, ऐसा श्रद्धान है। ऐसे श्रद्धान अकेले मात्र से भी आज्ञा सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता, दृष्टि की निर्मलता व्यक्ति को प्राप्त हो सकती। फिर मार्ग सम्यक दर्शन, वीतराग मार्ग है जिसकी चर्या देख करके वीतराग मुनि महाराज को देख करके पशु को भी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो सकती कि बाहर खड़ा हुआ है और वहां से वीतराग मुद्रा उसके देखने में आ गई। फौरन उसके भी मन है, वो भी विचारवान है, वो विचार कर सकता कि वास्तव में यही निष्परिग्रह दशा ही श्रेष्ठ है, ये आसक्ति तो संसार बढ़ाने वाली है। इतने मात्र ज्ञान से कछु पढ़े लिखे नहीं है, कौन स्कूल में नहीं पढ़े गए पशु वगैरह, गाय कौन स्कूल पढ़ी है, आ अनार को सीखो उन्हें लिख तो लो बनत नहीं है, सिलेट पट्टी ओ के पास आए, लेकिन फिर भी उसने वीतराग मुद्रा देख करके क्या निर्णय ले लिया कि संसार में तो परिग्रह दुखदाई है, ये मुद्रा ठीक है, निष्परिग्रह की प्रेरणा देती है और आसक्ति तो संसार को बढ़ाने वाली है। इतने मात्र निर्णय करने से उसको दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होगी। और अपन तो 24 घंटे भी देखते हैं लेकिन काहे के लिए, हमारी दुकान अच्छी चलत रहे, हमारा मकान अच्छो बन जावे, इस आसक्ति से प्रेरित होकर के देखते हैं। आसक्ति से प्रेरित होकर के जो व्यक्ति सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा रखता है उसे दृष्टि की निर्मलता प्राप्त नहीं हो सकती। अनाशक्ति अपने भीतर लाने के लिए प्रयत्नशील है, वो अगर श्रद्धान करता है तो उसे दृष्टि की निर्मलता प्राप्त आज भी हो सकती। उपदेश सुनने मात्र से वीतराग भगवान के जीवन चरित्र को, महापुरुषों के जीवन चरित्र को, उनकी जीवनचर्या को, उनके संस्मरण को सुन करके, अरे वाह इस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, बहुत अच्छा है, वास्तव में तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा निर्णय अपने मन में आ गया, हो गई दृष्टि निर्मल। महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनकर के अकेले, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, न किताब पढ़ी न कुछ, दूसरे के द्वारा महापुरुषों का जीवन चरित्र सुन लिया और उसे ही सही मान करके अनाशक्त होकर के अपना जीवन जीने का संकल्प ले लिया। उपदेश के द्वारा भी दृष्टि निर्मल हो सकती है। सूत्र सम्यक दर्शन भी है, द्वादशांग जो कि आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस द्वादशांग का अध्ययन करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है जीवों को, द्वादशांग भी निमित्त बन जाता है, द्रव सुट भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता है। आज वर्तमान में जितना भी है उपदेश प्राप्त है अपन को वीतराग भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का, बताइएगा उस उपदेश से भी अपन चाहते तो दृष्टि निर्मल कर सकते थे, लेकिन उस शास्त्र का भी उपयोग काहे के लिए किया अपन ने, उस ज्ञान का भी उपयोग दो पैसा कमावे के लाने, आजीविका के लिए, अपने दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करने के लिए किया क्या? आज कितना ज्ञान है लोगों के पास, लेकिन काहे के लिए? अर्थ करी विद्या है, दो पैसा कमावे के लाने ज्ञान प्राप्त है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि आत्म कल्याण की ललक पैदा हो जाए तो दृष्टि की निर्मलता से संपन्न हो सकता व्यक्ति। जीवादि तत्व जो कि जिनका की अर्थ बहुत दुरू है, बहुत कठिनाई से समझ में आता है, कल अपन ने चर्चा करी थी, शिवभूति नाम के मुनि महाराज जो कि तुस्मास घोषंतो ऐसा कहते थे, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, इतनी अज्ञानता थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था अक्षर का, लेकिन भेद विज्ञान होने पर, बीज बुद्धि रिद्धि होने पर, सारे द्वादशांग को जैसे कि एक बीज में पूरा वृक्ष होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना सा बीज खसखस के बराबर, बट वृक्ष उसके भीतर ही है, उसको जरा सी जमीन मिली कि फैलेगा वो, ठीक ऐसा ही बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त करके भी और तत्व का ज्ञान प्राप्त करके उस पर श्रद्धान करके अपनी दृष्टि को निर्मल बनाया जा सकता है, वो भी निमित्त है। इतना ही नहीं, संक्षेप में कुछ लोगों को तो विस्तार में तत्व का स्वरूप सुनने पर दृष्टि निर्मल हो जाती है, कुछ लोग थोड़े से संक्षेप में सुन करके ही दृष्टि को निर्मल कर सकते हैं, वह भी निमित्त है। डिटेल में किसी चीज को बताने पर समझ में आता है, किसी को थोड़े में ही बताने पर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है, वो भी निमित्त बन सकता है। बिना पढ़े बिना समझे भी जिसको अपनी विशुद्धि के द्वारा अर्थ समझ में आ जाए। हमने जैसे ही कहा किसी व्यक्ति को कि जाओ घड़ा ले आओ, घड़ा कैसा होता है, कहां रखा होगा, घड़े का अर्थ क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया। घड़ा क्या काम में आता है, पानी भरा हुआ उस कोने में रखा हुआ है घड़ा, ऐसा होता है, और उठा करके ले आया। घड़ा शब्द सुनने मात्र से उसको जैसे कि अर्थ का बोध हो गया, ऐसे ही जीव सुन करके जीव तत्व होता है, उसका स्वभाव क्या है जानना देखना और वितरागता, ऐसा जिसके लिए भाव भासना हो गई वह भी निमित्त बन सकती है, अर्थ भी निमित्त बन सकता है दृष्टि की निर्मलता। अवगार और परमावगार दो और सम्यक दर्शन कहे गए हैं। अवगार सम्यक दर्शन तब होता है जबकि अंग प्रविष्ट के साथ साथ अंग बाह्य, जो आज अपने पास जितना ज्ञान है वो भी है, और जो आज उपलब्ध नहीं है लेकिन गणधर स्वामी के द्वारा कहा गया द्वादशांग है, उस सब का ज्ञान प्राप्त हो जाए किसी को, फिर उसके भीतर जो दृष्टि की निर्मलता और श्रद्धान आता है उसको अवगार सम्यक दर्शन कहते हैं। और केवल ज्ञान होने के बाद वस्तु स्वरूप को अपनी आंखों से स्पष्ट देख रहे हैं केवल ज्ञान के माध्यम से, तब जो दृष्टि में निर्मलता आती है उसे परमावगार सम्यक दर्शन। भैया कितने सारे निमित्त हैं अपनी दृष्टि निर्मल बनाने के, चाहे जिस निमित्त का आप आलंबन लें और अपनी दृष्टि को निर्मल बनाए। दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रशक्षते विद्याव्रत संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सती सम्यक्ते बीजा भावे तरोर, ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा गाई है। सम्यक दर्शन को तो अपने लिए संसार से पार होने के लिए खेवटिया कहा, जैसे कि नाव से नदी पार कराने के लिए नाविक महत्वपूर्ण है, ऐसा ही दृष्टि की निर्मलता भी इस संसार रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए नाव में बैठे हुए नाविक की तरह जो उस पार लगाता है नाव को, तो दर्शन को कर्णधार माना है। दृष्टि की निर्मलता अगर प्राप्त हो गई है तो हम आसानी से अपने संसार रूपी समुद्र में पतवार चला करके जैसे कि नाविक और नदी पार कर लेता है, ऐसे ही इस संसार समुद्र से भी पार हो सकते। इतनी प्रशंसा की। इतना ही नहीं, विद्या व्रत संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, इन सब की स्थिति वृद्धि और फल किस किस चीज की, चाहे कितौ ज्ञान होवे चाहे कितौ अच्छो आचरण होवे, लेकिन इन सब के बीच में आपकी दृष्टि ठीक नहीं है अगर, तो ये ना इनकी स्थिति है ना इनकी वृद्धि है ना इनमें फल लगेंगे। ज्ञान भी फलवान नहीं हो सकता, आचरण भी फलवान नहीं हो सकता अगर आपके पास दृष्टि नहीं है। तो इतना महत्व दृष्टि की निर्मलता का और सम्यक दर्शन का है, अपन को समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ऐसी दृष्टि अपनी भी प्राप्त हो जाए। अपन भी ऐसे भेद विज्ञान को, शरीर अलग है आत्मा अलग है, चिंता अपन आत्मा की करें, सब जीवों के आत्मा की चिंता भी अपने मन में हो। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि अपन का चिंता करते, किसान क्या चिंता करता कि हमारे सब पानी गिरे, पानी गिरे तो का अपने खेत में गिरे, हाँ सब में पानी गिरे, मनो फसल कौन की काटेंगे, सबकी नहीं अपने खेत की, बताइए। भावना तो भाएंगे सबके कल्याण की, उसमें भी अपना कल्याण नित है, ऐसा विचार करके और अपन ऐसी दृष्टि प्राप्त करें जिससे कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना अपने भीतर आए और अपन भी उसी में शामिल होकर के अपना कल्याण कर सकें। इस प्रकार अपन को भावना भाना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता
का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता
हूँ, निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ते हो फूल झड़िया,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्धक,
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि रास महम,
ओम प्रेम परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संगस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भूमिसागर जी महाराज चरण में अर्घ्य निर्पामे ते स्वाहा।
मिथ्या तम नाश वेखो काल के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो भानु शिव कानी है,
क्षमा द्रव्य जान वेखो वंदे विधि भान वेखो स्वपर पहचान वेखो परम प्रमाणी है,
अनुभवताए वेखो जीवों के जताए वेखो काहू न सताए वेखो भव्य और आनी है,
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही दिन वाणी है,
दावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हु, हे दिन वाणी भारती तो ही जपो दिन त्रैन, दो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।